वास्मी कवि वास्मी नजमान श्रावण का महीना है। आज मैं अपने गुरु पाद पद्म लिप्त गुरुदा प्रविष्टम विष्णुपाद शिष्य भक्ति प्रज्ञान के सर्व स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड अर्पण ज्ञापन करते हुए आज श्रावण महीने में फूलों के संबंध में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरा सभी स्नेह आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रावण का महीना बहुत ही ब्रज के लिए महत्वपूर्ण चारों ओर रिम झिम रिम झिम वर्षा श्रावण के सुहावने उमड़ घुमड़ कर चारों ओर बादल छा रहे हैं। कभी वर्षा की फुहारें पड़ती हैं, चारों तरफ में हरियाली छाई है। जमुना में भी निर्मल सुंदर मीठा जल भरा है, उसमें छोटी छोटी लहरें आ रही हैं, कमल के फूल उसमें लहरा रहे हैं, भौरें उसमें गुंजार कर रहे हैं, मानो श्रावण महीने का संदेश कोई भी कुहक रही है। लोगों को देख करके आनंद के मारे नृत्य करने लगते हैं और ऐसी दशा में ब्रज की जितनी भी लड़कियां हैं बहुएं हैं वे अपने पिता के घर में जाकर झूले पर झूलना चाहती हैं। विशेष करके ब्रज में यह सबसे बड़ा त्योहार होता है। राधा जी की शादी हो चुकी है, वे जावत में हैं, अभी तक सिद्धाम भैया नहीं आया, बड़ी चिंता कर रही हैं। श्रावण का महीना में दो चार दिन पांच दिन सात दिन चले गए, अभी तक सुदाम भैया नहीं है, इसलिए उनके आंखें भी उमड़ने घुमड़ने लगती हैं, भीतर भीतर रोती हैं। इतने में सुदाम एक दिन राधा जी को लेने के लिए नहीं सुनाई पड़ता, सुनाई पड़ रहा है?
हेलो
हेलो
माया जी आवाज आ रही है आपकी?
हाँ तो ठीक है, चलने दीजिए, बीच बीच में आप बोल देंगे यदि नहीं कुछ और सुविधा। तो श्रीराम जी बरसाने से जावत में पहुंचे, राधा जी उनको देख करके ही अपने भैया को देख करके बड़ी जोर से डकर डकर रोने लगी, सिद्धाम भी रोने लग गए। जब आवे से शांत हुआ तो बोली, भैया क्या मेरे माता पिताजी मेरे भैया मेरी छोटी बहन अनंग मंजरी क्या मुझे भूल गई है? श्रावण महीना प्रायः समाप्त होने को आया और पिताजी ने मुझे बुलाया नहीं। ये बहन हम लोग कुछ व्यस्त थे, रोज ही आने को सोच रहा था, कुछ आने में विलंब हो गई। राजा जी ने कहा, भैया तुम्हारी सास को जाकर के इससे कहो जो मुझे भेज दे, वो मुझे भेजना नहीं चाहती, इसलिए पहले जाकर के उसे मीठी मीठी बोली और जो कुछ लाए हो और सारी मिठाइयां उसे दो और आभूषण। सुनते हैं श्रीराम भैया क्या जेठला के पास में गए, उन्होंने बड़े प्रेम से उसे प्रणाम किया और उसे मीठी मीठी बातों से उसे प्रसन्न किया और जो कुछ उपहार लाए थे उसे दिया। कहा जी अब सावन का महीना है, मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूं, आप कृपा करके मेरे साथ में उसे भेज दीजिए। पहले तो वो भेजना नहीं चाहती, आनाकानी करती है, किंतु श्रीराम भैया के आग्रह को देखकर उसने भेजना स्वीकार किया। उसे लेकर के गाड़ी में बैठाया, गाड़ी मैंने विमान जैसा सजा हुआ अच्छे अच्छे बैलों के द्वारा सीमा पर आते ही राधिका जी पुनः जोर जोर से रोती ही विलाप करने लग गई। मैया और पिताजी ने और पास पड़ोस की महिलाओं ने उन्हें घर में ले गई। वहां पर पहले से सब लोगों से मिली पिताजी ने, मैया ने, उसने उन्हें आलिंगन पास में बद्ध कर लिया, सांत्वना दिया। इसके बाद में अपनी सहेलियों से मिली, झूला पहले से ही तैयार था, सखियों के साथ में झूला पर बैठी अष्ट सखियां ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता तुंग विद्या इंदुलेखा रंग देवी ईशु देवी और उनकी अपनी प्रधान सखियां रूपमंजरी रतिमंजरी लौंगमंजरी इत्यादि मानो पहले से इसके लिए प्रस्तुत थी। झूला पर राधा जी को बैठाकर मल्हार राग गाना आरंभ किया। मल्हार राग के साथी में जय ही आरंभ हुआ, श्रीमती जी स्वयं स्वरूप शक्ति जब मल्हार राग गाएं और उनकी सहेलियां तो वर्षा की फुहार क्यों न हो, झिम झिम रिम झिम वर्षे की फुहार पड़ने लगी, कोयल भी कुहकने लगी, मोर भी नृत्य करने लगे और बड़े आनंद के साथ में झूलने और झुलाने लगे। किंतु इसमें कोई रस या आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? गोपियों के प्राण बल्लभ कृष्ण नहीं है। उधर कृष्ण भी मिलना चाहते हैं, इधर श्रीमती राधिका जी भी मिलना चाहती हैं, किंतु सहज में मिलन होना बड़ा भारी कठिन है, सहज नहीं हो सकता। राधा जी कुछ दिन पहले से ही उन्होंने मांग की थी कि मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगी। इधर कृष्ण तड़प रहे हैं, सुगल जी कृष्ण की दशा देकर के विरह दशा देकर किसी प्रकार से पहुंचे। ये दो दिन राधा जी के आने के पहले की बात है, जब वो आती हैं बरसाने में, इसके पहले ये जावट की ही बात है। सुगल जी जावट में गए, उनको देख करके जेठला उन पर बिगड़ पड़ी, बरस पड़ी, बोली तू मरा किस लिए आया यहां, तू यहां पर क्यों आया बतला। उन्होंने कहा जी हमारा बछड़ा एक कहीं खो गया है, उसको ढूंढने के लिए आया। तो तेरा बछड़ा यहां से कैसे आ जाएगा? कहा जी मैं खोज रहा हूं, बहुत दिनों से उसे मिल रहा, हो सकता है कि आपके गायों के साथ में यहां पर आ गया हो। सुगल की बात सुन करके अच्छा तो जाओ जल्दी से ढूंढ करके जल्दी से यहां से चले जाओ। वो भीतर चला गया, भीतर जाकर के राधिका जी से और उनकी सहेलियों से मिला। आज कृष्ण आपके विरह में तड़प रहे हैं, अधिक दिन शायद प्राण भी न रखे, किसी न किसी प्रकार से उनका उनसे आपका मिलना अत्यंत आवश्यक है। सुन करके राधा जी थक नहीं सकी, जल्दी से जल्दी मिलने के लिए उतावली हो गई, किंतु कैसे मिला जाए। सुगल जी देखने में बड़े खूबसूरत और राधा जी के साथ ही जैसे ही एकदम खूबसूरत थे। यदि इनको कोई लहंगा और चुंदरी इत्यादि पहनाया जाए तो राधिका जी के समान एकदम लगते थे। उन्होंने राधा जी को अपने वेश में सजा दिया, सुगल के सखा में पगड़ी और धोती और खूब राधा जी का लहंगा इत्यादि सब पहन करके घर में रह गए और इनको कहा आप हमारे देश में जा करके, कृष्ण यहाँ पर हैं नंदगांव में, आप उनसे मिलिए। ऐसा कह करके सुबल जी स्वयं राधिका जी का देश पहन करके कुछ शक्तियों के साथ वहाँ रह गए और राधिका जी सुबल का देश बना करके पगड़ी और साथे और धोती इत्यादि पहन करके लठिया लेकर के वहाँ से चलने लगी, किंतु उनके स्त्रियोचित जो वस्त्रक्षल इत्यादि हैं वो तो दिखाई पड़ने से तो वो पता चल जाएगा, इसलिए उनके गोदी में एक छोटा सा बछड़ा नया भी उनके गोदी में बैठा दिया और वो गोदी में लेकर के चली। उनकी सास ने पूछा अरे सुगल क्या तू तुम्हारा बछड़ा मिल गया, तो देखो मैया ये तुम्हारे गायों को साथ में था, इसको लेकर के मैं जल्दी से जाओ फिर मत आना और उस काले को मत लाना, इसके लिए सावधान रहना। श्रीमती राधिका जी उसी के शब्दों में ही स्वर से स्वर मिला करके ऐसा बोली थी, इसलिए वो पहचान नहीं सकी। कृष्ण के पास में जब तू मिली उस समय में कृष्ण ने देखा जी तो सुगल सखा वो भी नहीं पहचान सके। सुगल सखा कहो क्या समाचार है, वो मिलेंगे कि नहीं, अतः उनका मिलना बड़ा भारी दुष्कर है। चारों तरफ में पहरे और सब बैठा दिए गए हैं और वो खुद ही लठिया लेकर के खड़ी है और उनको आने नहीं देती, इसलिए वो भी बड़ी बड़ी विरह में कातर हैं, उनका अनाशन है। सुन करके कृष्ण हाय हाय करने लगे और तड़पने लगे, अष्टसात्विक विकार उनके होने लगे, मूर्छित जैसे होने लगे। इतने में सुगल बनी हुई राधिका जी ने अपने घूंघट उठा लिए और बछड़े को रख दिया और देखा जी ये तो श्रीमती राधिका जी खड़ी हैं, प्रेम से मिलन हुआ। ये जबकि वहां पर पहुंची बरसाने में जब गई तो दूसरे दिन कृष्ण को पता लगा, वो एक विष दूसरे वेश में सजा कर कृष्ण और वहां पर मिले। सबसे उन्हें मल्हार राग के साथ में कृष्ण को झूलने पर बैठाकर और उन्हें झुलाने लगी। कृष्ण स्वयं बैठ करके झूले पर और राधिका जी को बैठा करके ऐसे झूलने लगे, शोर से झूलाने लगे। राधिका जी ने उनको आलिंगन पास में बद्ध कर लिया, जो कृष्ण बहुत दिनों से चाहने पर भी राधा जी उनसे मिलती नहीं थी और आज स्वयं ही उनको पकड़ करके ऐसे बैठ गई जैसे कि गिर न जाएं और कृष्ण की मुराद ऐसे पूरी हुई। सखियाँ बड़े आनंद के साथ में उनको झुलाने लगी। इस प्रकार से सावन का महीना में झूलन में ऐसी सब लीलाएं हैं जो कि कृष्ण और राधिका जी चाहने पर भी जो नहीं कर सकते वो झूलन में झूले पर वो सब लीलाएं उनकी होती हैं और सखियां बड़ी आनंदित होती हैं उन्हें मिला करके, कृष्ण भी आनंदित होते हैं। इस प्रकार से सावन का महीना वो बरसाने में ही रहती हैं और वहीं पर कृष्ण से भी मिलती हैं और प्रतिदिन झूले में झूलती हैं और सखियाँ भी आनंदित होकर के झुलाती हैं। कभी कभी राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के सखियों को भी झुलाते हैं एवं आनंदित होते हैं। इस प्रकार से अभी भी ब्रज में ये रीति चली आ रही है कि सभी जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी कहीं बाहर में हुई है या ब्रज में हुई है, पिता उसे बुलाते हैं, भैया उसे बुलाने आते हैं और वो सभी अपने तिहर में जाकर वहाँ पर झूले रहते हैं, आम की डाली में, कदम्ब की डाली में, और वहाँ पर सब उसी भावना से कृष्ण और राधा जी के कीर्तनों को करते हुए सभी लोग झुलाते हैं। ये सब जो लीलाएं हैं हमारे गोस्वामियों ने, विशेष करके रूप गोस्वामी इत्यादि जी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने अपने कृष्ण भावनामृत संग्रह में, गोविंद लीलामृत में, अरूप गोस्वामी ने अपने उज्जवलीन मणि ग्रंथों में इसका ग्रंथन किया है। मुक्त महापुरुष लोग अपने सिद्ध शरीर से मंजरी या गोपी रूप में 24 घंटे बैठकर इन लीलाओं का चिंतन करते हैं। साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। जब कि साधक अपने गुरु और वैष्णव के अधीन रहकर भजन साधन करते करते, उत्तमा भक्ति का साधन करते हुए जब उसके सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मौत मोह सब दूर हो जाते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति, जब उसकी भक्ति निष्ठा में बदल जाती है और इसके बाद रुचि और आसक्ति आती है, तो भजन के परिपक्व होने पर सर्वशक्ति की ह्लादनी और संबित की सार भक्ति वृत्ति, जिसको शुद्ध सत्य कहते हैं, जीवों के हृदय पर उदित होती है। उस समय में जीव अपने स्वरूप की कुछ झलक आभास के रूप में दर्शन करता है और उपलब्धि करता है। गुरु उस समय समझ करके उसको इसी प्रकार के एकादश भाव देता है, तुम्हारा नाम क्या है, स्वरूप कहाँ है, कहाँ बास है, कैसे तुम्हारे वस्त्र हैं, कैसे तुम्हारे भाव है, तुम पाली पाल्यदासी तुम कैसी है और तुम्हारी सेवा क्या है, इस प्रकार के एकादश भाव हैं। उन भावों को गुरु उनको देता है। ये रूपानुगत पद्धति है भजन की। इसके द्वारा सब लीलाओं का चिंतन करते करते भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, गोपियों की कृपा से, स्वरूप शक्ति और भक्ति वृत्ति की कृपा से ये सब चिंतन अपने आप होने लगता है, लीलाओं की माला बन जाती है। इसी लीलाओं के चिंतन को सारस्वती लीला चिंतन करते हैं कहते हैं। ये साधारण भक्तों के लिए नहीं, अनर्थ मुक्त लोगों के लिए ये किसी किसी एक बिरले भक्तों का ऐसा होता है। हमारे भजन का यही उद्देश्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी चीज को देने के लिए जगत में पधारे थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े करुण हैं, बड़े रसिक हैं। रसिक होने के नाते श्रीमती राधिका जी के भावों का आस्वादन करने के लिए आए और करुण होने के नाते रागानुगा मार्ग की शिक्षा देने के लिए आए। यही रागानुगा मार्ग है। रूप गोस्वामी के अनुगत्य के बिना, उनके अनुगत जो जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि हैं, नरोत्तम ठाकुर हैं, इनके अनुगत हुए बिना, इनके भावों को ग्रहण किए बिना कोई भी इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये जो परम सौभाग्यवान जीव हैं उनके लिए ही ये चीज़ें हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु आकर के सब साधारण में इस चीज़ों को वितरण किया। थोड़ी सी भी किसी में गुण देखा, थोड़ा सा भी, तो उनके लिए इन चीज़ों को प्रकाश किया। ये सौभाग्यवान जीव सहज इस चीज़ को पा करके और इस दुर्लभ भजन साधन में प्रवेश करेंगे, तब इन लीलाओं का चिंतन कर सकेंगे, तब राधा कृष्ण का प्रेम क्या है, महाभाव किसको कहते हैं, अथवा प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि किसको कहते हैं, तब कोई समझ सकता। और जब इन अवस्थाओं में आएगा, अंततः प्रेम की भूमिका में जब आएगा, तब कुछ कुछ इन लीलाओं को समझने के लिए योग्य हो सकता है। इतना दुर्लभ चैतन्य महाप्रभु जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने जो सामने आया उसको कृष्ण प्रेम किया। तो इसलिए आप लोग परम सौभाग्य हैं जो चैतन्य महाप्रभु की लाइन में, उनकी आनुगत्य में आप लोग भजन करने की कुछ शिक्षा ला। केवल मंदिर बनाने के लिए, केवल इधर उधर पैसा कमाने के लिए या और कुछ जो आजकल साधारण रूप में और जगहों में चल रहा है, इसके लिए यह दुर्लभ भजन देने के लिए ही स्वामी जी भी वहाँ पर पधारे थे और इतना कष्ट किया था, इतने प्रचार केंद्र खुले थे। आज कल इन सब चीज़ों का सर्वथा अभाव हो रहा है। ऊपर से बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लोग आते हैं और कुछ दिनों के बाद में भजन में रस नहीं मिलता, वो छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए आप लोग भजन के उद्देश्य से महाप्रभु के आंतरिक भावों को समझने की चेष्टा करेंगे और इसमें प्रयास करें। इसलिए आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति तक पहुँचने के लिए, भाव तक पहुँचने के लिए चेष्टा करें। हमारे अंदर जो अनर्थ है उसको दूर करें और अनुकूल जो भक्ति के हैं उस सबको ग्रहण करें। विशेष करके कृष्ण की भक्ति के लिए अखिल चेष्टा परायण होइए और कृष्ण की भक्ति के लिए अखिल भोगों का त्याग होना चाहिए, तब ऐसे सुंदर भाव आते हैं। जैसे भी वो आप लोग परम सौभाग्यवान हैं, आप लोग सभी लोग मिल करके ऐसी भक्ति का अनुशीलन करें, जैव धर्म का पाठ आप लोगों के अंदर हो और ऐसे ऐसे सुंदर विचार आए। हमारा वहाँ आने का यही उद्देश्य है, ये शुद्ध भक्ति आप लोगों को दी जाए, और कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसी उद्देश्य से आप लोग वहाँ पर एक मंदिर बनाने की भी चेष्टा कर रहे हैं और उत्साह के साथ में करेंगे, किंतु प्रतिदिन या बीच बीच में जैसे आप लोग अभी व्यवस्था कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का अनुशील प्रवचन पाठ और ऐसी ऐसी झूलन जन्माष्टमी रामनवमी इत्यादि का पालन होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके रूप गोस्वामी के विचारों का आप पालन करें। इसके लिए आप लोग उनके द्वारा लिखित श्री उपदेशामृत मन शिक्षा इत्यादि का भी बीच बीच में पाठ होना चाहिए। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोग इतने लोग आए हैं, इसलिए सबको हमारा हार्दिक स्नेह आशीर्वाद है। आप इसे ग्रहण करेंगे और भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए चेष्टा करें। गौ प्रमानंद हरि हरि
जय।
धन्यवाद। ठीक है
जी, बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कुछ समय दिया हम लोगों को।
हाँ।
आशीर्वाद दीजिए कि आपके उपदेशों का पालन कर सके।
हाँ। आप लोग नियमित रूप से ऐसे ही कभी कभी बैठेंगे और हमको कहेंगे तो मैं बीच बीच में कुछ बोल दिया करूँगा। और मैं अब हमारे यहाँ पर आजकल मैं खूब एकादशी से ही बड़े अधिक परिमाण में वृंदावन में झूलन हम लोग मनाने जा रहे हैं। दिल्ली से भी काफ़ी लोग आएंगे और वृंदावन में वहीं पर 5 दिन रह करके मैं वहाँ पर प्रवचन करूँगा, तो आप लोग हमारा आशीर्वाद ग्रहण करें। बस
हरे कृष्ण।
हाँ
हरे कृष्ण जी।
हरी हरी बोल।